आज 23 अगस्त 2020 का शुभ दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज मैं आपको सत्यमेव जयते एक टॉपिक है, विषय है, जिसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। सत्यमेव जयते, जीवन तो दुख सुख के ताने बाने से बुना हुआ वस्त्र है। दिन रात सदगनी जय प्रजय, धूप छाया जन्म हानि लाभ आदि का द्वंद ही जीवन है। भक्त वत्सल प्रभु की अपार अनुकंपा से मैंने जीवन में अपने वाले में आने वाले प्रत्येक द्वंद को समान रूप से देखा भी और जिया भी है। गीता के 12वें अध्याय का पठन पाठन करना और उसके अनुसार अक्षरश जीवन जीना ही मेरे जीवन की तपस्या है। यही कारण है कि मेरे जीवन में कभी भी हताशा और निराशा का प्रवेश नहीं हो पाया। जयपुर 3 नवंबर 2016 को मैं प्रिय शिवानी के प्यार भरे निमंत्रण के कारण श्री महादेवी तीर्थ से सिंगापुर गई। एक महीने के पश्चात मैं सिंगापुर से दिल्ली 1 दिसंबर 1216 को पायलट अनिल अरोड़ा जी के घर पहुंची। अनिल जी ने बताया कि कुल्लू से फोन आया था कि कमाल जी मनोज जी के साथ जरूरी काम के लिए शिमला गए हैं। 2 दिसंबर को मैं चंडीगढ़ पहुंची। 3 दिसंबर को कुल्लू से फोन आया कि मंदिर की बिजली का संपर्क काट दिया गया है। मैं 5 दिसंबर सायंकाल मंदिर पहुंची तो देखा कि मंदिर में घुप अंधेरा छाया हुआ था। कुछ भक्तों ने आगे बढ़कर सब बात बताई और पास खड़े विवेक सूर्य ने कहा, माता जी आपके आने का इंतजाम मैंने अपने नए घर में कर दिया है और वह मुझे सल्ला जी बिमला जी और बालक मस्त राम को लेकर अपने नए घर में आ गए। घर बिल्कुल नया होने के कारण हमने सर्वप्रथम इसमें प्रवेश किया और कन्या पूजन भी। 9 दिसंबर को मैं प्रातः मंदिर गई। शारदा माँ सेवा संघ की कार्यकर्मी वहाँ उपस्थित थी। तभी मनोज जी ने कहा, माता जी डीएफओ आपसे मिलना चाहते हैं। इतने में डीएफओ साहब आए और मेरे पास बैठ गए। उनके साथ 4 अन्य कर्मचारी भी थे। डीएफओ ने कहा, माता जी आप मंदिर को वन विभाग को दे दूं, फिर वन विभाग अवश्य बिजली लगा देगा। ये बात सुनकर मैं हतप्रभ सी हो गई। ना जाने क्या चाल है मूर्ति की। मैंने धैर्य पूर्वक उनको उत्तर दिया, डीएफओ साहब मैं किसी भी कीमत पर आपको मंदिर नहीं दूंगी, जैसा कि मंदिर मेरा नहीं है। मंदिर तो जनता जनार्दन का है, जनता द्वारा जनता के लिए ही बनाया गया है। मैं तो मंदिर की देखभाल करती हूँ। डीएफओ ने फिर कहा, माता जी अगर आप लिख कर नहीं दोगी तो नजायज स्थान पर होने से इसको तोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा तोड़ दो। फिर डीएफओ ने कहा हम एक नई कमेटी बनाएंगे जिसमें आपको पूरे अधिकार देंगे। मैंने कहा कुमार जी का क्या होगा। कुमार जी पास ही बैठे थे। कुमार जी को देखते हुए डीएफओ ने कहा इनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैंने कहा बस ठीक है, मैं कभी कुछ लिख कर नहीं दूंगी, जो करना है वन विभाग को वह कर ले। प्रतिदिन वन विभाग वाले धमकियों पर धमकियां देते रहे पर मैं डरने वाली नहीं थी। कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया, पास किया कि माता जी स्वयं शिमला में सीएम वीरभद्र से तथा कैबिनेट मिनिस्टरों से मिलेगी तो शायद क्रम बन जाएगा। कार्यकारिणी का प्रस्ताव मंजूर करके मैं श्री मनोज सूद और उनकी धर्मपत्नी अमिता सूद श्रीमती राज नेगी को लेकर 16 दिसंबर को शिमला गई। 17-18 दिसंबर को हम सचिवालय में सीएम को मिलने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसी दौरान सचिवालय में कैबिनेट मिनिस्टर से मिले। सब ने कहा सीएम से मिलो, पर गंदी राजनीति के कारण हमें सीएम के ऑफिस में जाने के लिए कोई समय नहीं मिला। कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा माता जी आपके साथ पैसे लाई हैं, तो मैंने कहा हाँ 1 लाख का चेक है। तो कहते नहीं चेक नहीं, तो मैं समझ गई कि ये तो राजनीति गंदी राजनीति हो गई है, पैसे से ही काम बनता है। आखिर 18 दिसंबर को 6 बजे सभी सीएम से मिलने के लिए चले गए। और हमें मिलने के लिए उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आलूवालिया ने जान बूझ कर नहीं मिला है। उन्होंने हमारे नाम तो लिख लिए थे 2 बजे, लेकिन हमारी चिट सीएम के रूम में भेजी ही नहीं गई थी। सायकाल 6 बजे जब सचिवालय खाली हो गया, अंधेरी रात अपनी काली चादर बिछाने वाली ही थी कि द्वार के पास खड़े एक लंबे कद वाले पीएम ने पूछा, माताजी आपने सीएम साहब से मिलना है? मैंने कहा जी हाँ। उसने साथ वाले दरवाजे की चिटकनी बाहर से जो लगी हुई थी खोलकर द्वार खोला और कहा जाइए। उसमें मेरे पास श्रीमती अमता सूद थी। हम दोनों ने झट से कमरे के भीतर प्रवेश किया और देखा कि सामने सीएम भगवत सिंह कुर्सी पर बैठे हैं और सिर नीचे किए हुए किसी कार्य में व्यस्त हैं। उनकी बगल में एक व्यक्ति खड़ा है जो कुछ लिख रहा है। सीएम के सामने 2 व्यक्ति हाथ में फाइल लिए कुछ लिखवाने में व्यस्त हैं। हम दोनों व्यक्तियों के पीछे खड़ी हो गई। कुछ देर बाद सामने वाले व्यक्ति ने हमें इशारे से कहा आगे आइए। मेरे जीवन का ये प्रथम अवसर था कि मैं किसी राजनीतिक नेता के ऑफिस में उसके सामने प्रार्थना करने के लिए खड़ी थी। सीएम ने अमता की ओर घूर कर देख कर कहा, मंदिर में महंत क्यों बैठाया है? अमता उत्तर दे रही थी कि सीएम ने मेरी ओर देखा तो मैंने क्या देखा कि सीएम की आंखों से आग की ज्वाला निकल रही थी। मेरे दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मेरे मुख से निकला, मैं मंदिर में 1974 में भगवान के दर्शनों के लिए गई थी। मैंने वहाँ भगवान के दर्शन किए। अब मैं सब में भगवान ही देखती हूँ। अब इसमें भी मैं आप में भगवान ही देख रही हूँ। मेरी ये बात सुनकर सीएम ने आंखें नीचे कर ली, कोई उत्तर नहीं दिया। हम दोनों वहाँ खड़ी की खड़ी रही, लेकिन एक क्षण के पश्चात श्री महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। कहा, बस बहुत हुआ अपमान, चलो। श्री महाराज की वाणी सुनकर मैंने अमिता से कहा, चलो। हम दोनों बाहर आ गई। दूसरे दिन हम शिमला से कुल्लू आ गए। 24 दिसंबर को डीएफओ पुनः मुझसे मिलने आश्रम में आए और वही बात पुरानी दोहराई। मैंने उत्तर दिया कि सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड लोधी के द्वारा चलाई गई लैब्स की नीति का प्रयोग हमारे लिए कर रही है। मैं झांसी की रानी थी जो मर गई पर लैब्स की नीति नहीं मानी। कुछ भी हो, मैं आपकी इस रिक्वेस्ट या ऑर्डर को नहीं मानूंगी। उन्होंने कहा, सरकार बड़ी सख्त हो गई है तो वो मंदिर को फिर करवा देगी। मैंने कहा, तोड़ दो मंदिर को यदि हिम्मत है तो। ये भारत देश की संपत्ति है। श्री महाराज जी ने मंदिर की दीवार पर लिखा था, ये मंदिर देश की संपत्ति है, इसकी रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। मैंने आज तक जीवन में किसी भी लोभ या भय के कारण कोई गलत कार्य नहीं किया है, नहीं अब करूंगी। मेरा तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। मैंने यहाँ पर जनता की सेवा की तथा भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्रचार प्रसार किया है। कुमार जी मेरे पास 1978 में 16 वर्ष की आयु में आए थे। उन्होंने मंदिर को बनवाने और इसे सुचारू रूप देने में सर्वाधिक कार्य किया है, इसलिए ये यहाँ से नहीं जाएंगे। आप सरकार से कह दो कि अगर अधिक ही कुछ करना है तो सूर्य देव को भी कह दो कि वे मंदिर के ऊपर अपना प्रकाश न फैलाए। अब तो डीएफओ ने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, अब मैं नहीं आऊंगा। डीएफओ के जाने के बाद मुझे तुलसी व्यास जी का राम के मनुष्य ने लिखा दोहा सहसा ही स्मरण हो आया, जो न तरे भवसागर नर समाज असपाई, सो कि निंदक मंदमती आत्मा हम गुट जाए। अर्थात संसार रूपी सागर को जो मनुष्य मनुष्य बनकर भी पार नहीं करता है वो बड़ा मूर्ख है, मंद बुद्धि है, वो अपनी आत्मा की हत्या अपने आप ही कर लेता है। जब बिजली कटी तो मुझे ख्याल आया कि तुलसीदास जी ने तो पहले ही श्री राम के मानस में लिख दिया था कि जो न तरे, इसलिए मुझे ये सुनकर व देखकर इतना दुख नहीं हुआ और उन मनुष्यों पर क्रोध भी नहीं आया। अर्थात मेरे मन में कुछ भी नहीं आया कि जिन लोगों ने मंदिर की शिकायत की या बिजली काटी उनको मैं अभिशापित करूं। जब तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है ऐसे लोगों के बारे में तो क्या करना ऐसे मूर्खों का। तुलसीदास जी को उपलब्ध हुए के साथ साथ मुझे बचपन में पढ़ी एक कहानी भी याद आ गई। एक घाट पर एक मेमना और भेड़िया पानी पीने गए। भेड़िया ऊपर की ओर से पानी पीता और मेमना नीचे की ओर पानी पी रहा था। एक दिन भेड़िए ने मेमने से को कहा कि तू मेरा पानी गंदा क्यों करता है। तो मेमना बोला कि पानी तो आपकी तरफ से ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है, मैं कहाँ गंदा करता हूँ। भेड़िया चिल्लाया और कहने लगा कि पिछले साल भी तुमने ऐसा ही किया था मेरे साथ। इस पर मेमना बोला कि पिछले साल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर भेड़िए ने कहा तू नहीं तो तेरा बाप होगा। ये कहकर भेड़िया मेमने को खा लिया। इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है जिसकी लाठी उसी की भैंस, माइट इज राइट। अर्थात जब बड़ा शक्तिशाली आदमी किसी निर्बल जीव को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो कोई ना कोई बहाना खोजता है, कोई ना कोई मुद्दा बनाता है उसकी वस्तु को, उसकी जायदाद को या उसको उसी को नष्ट करने के लिए। जैसे उपरोक्त कहानी में भेड़िए द्वारा मेमने को नुकसान पहुंचाने के लिए पानी को गंदा करने का बहाना बनाया गया, उसी प्रकार मंदिर को हड़पने के लिए बिजली काटने जैसे बहाने बनाए गए ताकि मंदिर को नुकसान पहुंचे। लेकिन मैंने इसमें भगवत इच्छा को स्वीकारा। 2017 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सभी महीने व्यस्त गुजरे। हिंदुओं में एकता न होने से दो हिंदू भी इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं। देशभक्ति की भावना तो भले आज है ही किसमें, उधर से मीडिया भी बार बार जोर देता कि अब मंदिर टूटा, अब मंदिर टूट ही जाएगा। निर्लिप्त भाव से सब कुछ सहते हुए मैं शांति पूर्वक अपना जीवन जीते रही। मैंने सब कुछ तो सौंप दिया था श्री चरणों में, ये तो एक परीक्षा है। मैं भला मंदिर को जो जनता का है, जनता के लिए बनाया गया है, उसे भयवश या जीवन जीने की लालसा से सरकार को क्यों सौंप दूं? सरकार ने जो कदम उठाना है उठाए। भगवान का भक्त राजनीति से दूर रहता है। जुलाई 2017 को सर्किट हाउस ढालपुर में कांग्रेस के वन विभाग मंत्री श्री भरमोरी जी आए हुए थे। प्रातःकाल कुमार जी का फोन आया कि वन विभाग मंत्री भरमोरी जी से मिलने जाना है, 8 बजे का समय मिला है। मैं तैयार हुई और कैसे विपिन खेरा जी की गाड़ी द्वारा सर्किट हाउस पहुंच गई। वहां कार्य करने के सभी सदस्य भी पहुंचे हुए थे। मीटिंग रूम में हमें बैठाया गया। कुछ देर बाद भरमोरी जी आए, सभी खड़े हुए। मैंने भी प्रयास मात्र करना चाहा पर भरमोरी जी ने मुझे रुकने नहीं दिया। अब बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा आप हाईकोर्ट में हार चुके हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर से ही बिजली काटी गयी है। एक सदस्य ने कहा कि ये मंदिर ही अकेला राज्य में नहीं बना है, और भी कई मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद आदि भी हैं, उनकी बिजली भला क्यों नहीं काटी गई। इस प्रश्न को सुनकर वन विभाग के कंजर्वेटर को इशारा किया मिनिस्टर साहब ने, तो कंजर्वेटर ने कहा मैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हूँ, मुझे इसी मंदिर के बारे में नोटिस मिला था। अब मैंने भरमोरी जी से कहा क्या भारत में डेमोक्रेसी फेल है, आपने हमारे मौलिक अधिकारों को छीना है। मौलिक अधिकारों में एक नागरिकों के जीवन को जिंदा रखने का अधिकार है। मनुष्य जिंदा है तो भूमि भी है, वरना भूमि का क्या फायदा। मैंने संविधान पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। मैं सुंदरपुर गई थी, एक दिन के नोटिस से बिजली काट दी गई। फर्ज बनता था कि 15 दिन का नोटिस देकर हमें सूचित करते, हम अपने स्टाफ को जो वहाँ रहते हैं उनका प्रबंध कर लेते और अपना भी। बुद्धा स्टॉक मंत्री से मिली तो उन्होंने भी यही कहा था कि सरकार को आपको पहले एक चौकीदार देना था, चौकीदार देना था। बट इज दिस स्त्री स्पिरिचुअल ओल्ड लेडी की परवाह भी नहीं की। मैं आपके पास आई हूँ बिजली का पुनः कनेक्शन लेने, और ये कहते हुए मैंने आगे बताया कि मैं सीएम के पास भी गई थी जो एचपी का पहला व्यक्ति है। सीएम ने तो बैठने तक को नहीं कहा था। इस प्रकार एक घंटा मेरे विचार सुनकर वन विभाग मंत्री जी ने कहा, इतने में ही सत्यपाल एक्स मिनिस्टर भी वहाँ पहुँचे। तो धर्मवर जी ने हंसते हुए कहा कि लो सत्यपाल जी तो आपके पास पढ़े भी हैं, आप तो उनको पढ़ाया भी है। फिर इस प्रकार बातचीत हुई तो धर्मवर जी कहते हैं ठीक है मेरे हाथ में कुछ नहीं और सीएम के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है लगाने के लिए नहीं है तो ऐसे ही बनता है तो छोड़ो उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर वैसे दोषी को सजा देगा। तो मैंने धर्मवीर जी का सब हो गया, मेरे आ गया था धर्मवीर जी ने दोनों हाथ और आगे गाड़ी में बैठाया और फिर गाड़ी में बैठे। अब मेरी सरकार बनने की बात हो रही थी लेकिन 6 महीने शेष है, एरिया भी शराब में करता रहता था। तब मेरी सरकार बनने तक कांग्रेस सरकार ने भी मंदिर से कोई छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि धर्मवीर जी ने मेरी बात सुनकर सब समझ लिया था कि मंदिर में कोई गड़बड़ नहीं है, ये तो राजनीति की चाल है। ये सरकार ने भी इस कार्य को करने का आश्वासन दिया है। उसमें बाद बीजेपी की सरकार बनी, श्री जयराम ठाकुर सीएम और श्री गोविंद ठाकुर फाइनेंस मिनिस्टर बने। मैं उनसे भी मिली, उन्होंने विश्वास दिलाया कि जितनी जल्दी हो सकेगा हम बिजली लगवाएंगे और ये भी कहा कि हमारा कर्तव्य है और हमने आपकी फाइल कानून विभाग को दे दी है, ये विचार करते करेंगे कि बिजली कैसे लगाई जाए। इसलिए माता जी बिजली लगेगी जरूर लेकिन धीरे धीरे। जयराम जी सिंह जी मिली तो उन्होंने ये कहा कि माता जी ये बात हमारी नजर में है और हम इसका इंतजार करेंगे कि कानून विभाग क्या बोलता है, लेकिन ये कार्य होगा अवश्य। इसी दौरान मंदिर कमेटी ने एक सोलर प्लांट का बड़ा सा प्रोजेक्ट मंदिर में लगवा दिया है और मंदिर के कार्यो में एक बिंदी कोई बाधा नहीं आई। भगवती का क्षेत्र जो 1983 से यथावत आज तक चल रहा है वो भी चलता रहा, अन्य सेवा कार्य भी हो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो उस व्यक्ति को जिसके द्वारा बिजली कटवाई गई है और जिसने मंदिर की शिकायत की है। कहते हैं बुरे कर्मों का फल 22 पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। जीवन एक कला है, जीवन को जीने के लिए तथा जीवन को सही दिशा देने के लिए जीवन रूपी कला को जानना और पहचानना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। शेषन महाराज की अनुकंपा ही मेरे जीवन को सही दिशा देती है और मुझे जीवन के हर पहलू में चाहे सुख हो या दुख, चाहे सुनहरी रात हो या अंधेरी रात, मुझे इन दोनों में ही आत्म दर्शन होता है और मैं अभय हो जाती हूँ। भले ही भय प्रत्येक व्यक्ति को विरासत में ही मिला है पर इसमें आने पर भगवत कृपा से मानव भय मुक्त हो जाता है तथा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। वेद भी कहते हैं अभय हो जाओ, अभय पद प्राप्त हो। यही कारण है कि मेरे जीवन में जहाँ लोभ नहीं, कामना नहीं, मोह नहीं, भय नहीं, वहाँ प्रेम का राज्य है। प्रेम करो, प्रेम ही जीवन है, प्रेम में जीवन ही जीवित कला है। योगा कर्म सुख कौशलम, श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि योगा कर्म सुख कौशलम, युक्ति पूर्वक किया गया कर्म योग बन जाता है, कुशलता पूर्वक किया गया कर्म ही योग है। अतः प्रत्येक कर्म को भगवान से जोड़ना ही योग है। सत्यमेव जयते नानीतम सत्यम पंथा भेतो लेदियान येनां कर्म तेन शोध कामा यत्र सतस्य परमं निधानम्। अर्थात अंत में सत्य की ही जीत होती है ना कि असत्य की, यही वह मार्ग है जिससे होकर आप काम जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सारे देश में उत्साह का माहौल है, वो भी क्यों ना एक जवान हिंदुस्तानी स्पाई को 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान ने भारत की सख्त चेतावनी के चलते रिहा किया। अभिनंदन का अभिनंदन देश भर में हो रहा है, सीमा देवी देश में भी आज उत्सव का माहौल है। कथित संस्कारों जिसमें तीन स्थानीय राजनीतिक परिवेश स्वास्थ्य चलते चलते है महादेवी पेट की बिजली 2 साल 2 महीने पहले काट दी गई थी, जिसे आज माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में 2 न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी एवं सहयोगी न्यायाधीश अजय मोहन गोयल जी के बेंच के आदेशानुसार पुनः जोड़ा गया। एक ऐसा संयोग बना बिना किसी राजनीतिक हस्ती के रिक्वेस्ट के बिना ये काम संपन्न हुआ और हमेशा के लिए इस संकट का अंत भी हो गया और वो भी कानूनी तरीके से। मेरे आराध्य देव की असीम कृपा रही है हम पर। मैंने फिर से मुख्य न्यायाधीशों का धन्यवाद करने के लिए एक पत्र भी लिखा है। आपके ज्ञान के लिए मैं उसे यहाँ प्रेषित करती हूँ। कल्याणी मुख्य अधीश सूर्यकांत जी एवं सहयोगी न्यायाधीश अजय मोहन गोयल जी शिमला हाईकोर्ट कल्याण हो। बहुत कृपा से श्री महादेवी तीर्थ विद्युत को पुनः चालित करने के लिए आपका सहयोग सदैव स्मरणीय रहेगा। आपने तीर्थ स्थल में बिजली पुनः चालित करके अनगिनत श्रद्धालुओं पर्यटकों साधकों तथा मंदिर परिसर में रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुपम कार्य किया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में एक अधिकार जीने का भी अधिकार राइट टू लिव, आपने हमें वो जीने का अधिकार दिया है। भगवान सदैव आप दोनों पर कृपा बनाए रखे और आपका नाम न्यायाधीश के रूप में तारों में चंदा के रूप में चमकता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ मैं आप दोनों महानुभावों को दोनों महानुभावों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। शुभाकांक्षी गीता माँ सर्वोपेता श्री मां देवी तीर्थ वैष्णो माता मंदिर कुल्लू।